ओम शांति। आज हमारे बीच में मोहन सिंगल भाई जी उपस्थित है। मोहन सिंगल भाई जी का पहले सर्वप्रथम हम स्वागत करेंगे एक हाथ की ताली से। आज हमारे बीच में ऐसे ऐसी महान हस्तियां सामने खड़ी आई है जो अपने अनुभव के बोल सबको सुनाएंगे, अपने अनुभव के बोल से लाभान्वित करेंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय इनका देते हैं। मोहन सिंगल भाई जी हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है, 1988 से इस विंग के कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एनवायरमेंट अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस, कई सारी कॉन्फ्रेंस की है और सफलतापूर्वक उन कॉन्फ्रेंस का उन्होंने संचालन किया है। इसलिए 1992 में भारत सरकार की ओर से उनको पर्यावरण श्री का अवार्ड भी मिल चुका है। इसलिए एक बार एक हाथ की ताली से उनका वापस धन्यवाद भी करेंगे। साथ साथ उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी है अपनी संस्था की भी, कॉरपोरेशन, ग्लोबल कॉरपोरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, और देश विदेश में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और सबसे पहले वो ओएनजीसी में अपने जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद बाबा के यज्ञ में पूरी रीति से समर्पित हुए। तो आज का उनका टॉपिक है बेहद की वैराग्य वृत्ति एवं समर्पणता, तो उसके बारे में अपने अनुभव के बोल सभी को सुनाएंगे। मोहन सिंगल भाई।
ओम शांति। आज का विषय बहुत बहुत गुह्य है और जो पहला पार्ट है बेहद की वैराग्य वृत्ति, वो एक प्रोसेस है, यानी कि दूसरे भाग जो संपूर्णता है, समर्पणता है, वहां तक पहुंचने के लिए ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ये एक रास्ता है उसका। और हम सबके सामने यज्ञ में कौन ऐसे रोल मॉडल हैं जो संपूर्ण रीति से संपूर्णता को प्राप्त किए हुए हैं, कौन है ऐसे? ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा को तो विशेष कहेंगे क्योंकि बाबा कहता है जो संपूर्ण बन जाते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसे हैं जो सूक्ष्म वतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। मामा ने तो फिर भी शरीर लिया है और कहीं न कहीं पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का संपूर्णता के साथ बहुत बहुत गहरा संबंध है, कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा को हमें भी निकट से देखने का, अनुभव करने का मौका मिला 1962 में जब हम ज्ञान में आए, तब से बाबा के साथ काफी रहे 69 तक। और जब ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति थी 18 जनवरी कौन सा साल 1969, तो उन अंतिम दो दिनों में हम यहीं थे 17 और 18 जनवरी 1969, तो बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को देखने का जो मिला, अनुभव मिला, देखने का मौका मिला, उसमें वैराग्य वृत्ति का बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है बाबा के, जो बेहद की वैराग्य वृत्ति का। तो वैराग्य वृत्ति, वृत्ति शब्द जो है वृत्त से निकला है, वृत्त माने सर्किल, तो इसलिए वृत्ति वैसे तो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति वृत्ति मनसा संकल्प से भी सूक्ष्म है। और जो बात वृत्ति के अंदर होती है वो कभी भी एमर्ज हो जाती है, आउट हो जाती है। हम सब लोग ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं अलग अलग समय से, कोई 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे अलग अलग समय से चल रहे हैं, लेकिन कई संस्कार ऐसे होते हैं हमें लगता है अरे हमने तो विजय प्राप्त कर ली, 2 साल 5 साल 10 साल भी हो गए, उन संस्कारों ने कोई आक्रमण नहीं किया, वार नहीं किया, पुरानी बात कोई ऐसी स्मृति में नहीं आई, लेकिन सडनली ही अगर वृत्ति के अंदर वो बात होगी तो बाबा कहता है कि वो बातें जो हैं वृत्ति के अंदर हैं वो स्वप्न रूप में भी, और जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर वो चीजें छुपी रहती हैं और वो कभी भी बाहर आ सकती हैं। तो इसलिए अब बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए क्या करना चाहिए और ब्रह्मा बाबा ने क्या करा उसको देखते हुए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। पहली बात, हाँ, वैराग्य का तो हम सबको अनुभव है। कैसे अनुभव है वैराग्य का? लौकिक दुनिया में वैराग्य का अनुभव होता है। कैसे होता है? मसानी वैराग्य जिसे बोलते हैं ना, टेम्परेरी वैराग्य का, और वो जो है वातावरण के प्रभाव से वो हमारे ऊपर वैराग्य वृत्ति का की छाप छोड़ता है। कोई शरीर छोड़ता है जाओ बस पूरा वैराग्य जीवन से आ जाता है भले थोड़ी देर के लिए, और जब बाहर निकले फिर संसार की प्रवृत्तियां जीवन में आ जाती है। लेकिन ये वैराग्य पुरानी दुनिया से हो और बेहद का वैराग्य हो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो वैराग्य क्यों आता है? मसानी वैराग्य क्यों आता है? हाँ बोलिए, आप सब लोगों को तो अनुभव है ना, क्यों आता है मसानी वैराग्य? क्योंकि विनाशी, कोई देखते हैं शरीर विनाश हो गया, वैसे भी किसी के संबंधों में कटुता आ जाती है तो वैराग हो जाता है, शरीर में कोई बहुत बीमारी वगैरह आ गई तो वैराग आ गया टेम्परेरी। तो कोई भी चीज जो वैराग्य का उल्टा क्या है? अटैचमेंट। तो जहां पर अटैचमेंट होगी वहां पर ही वैराग्य टेम्परेरी आएगा, लेकिन जितना जितना हम अपनी अटैचमेंट को निकालते जाएंगे उतना उतना वो वैराग्य हमारा परमानेंट होता जाएगा, लास्टिंग होता जाएगा। ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखो, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने तो बस एक साक्षात्कार किया, देखा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और कैसे अर्थ को एक फ्लड आदि आ रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, और उस वक्त वो बाबा ने देख करके फिर बाबा की आंखों से जैसे आंसू निकलने लगे, और गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति बाबा ने कहा कि बस बस हे भगवान अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए, जैसे गीता में कहा है। और फिर बाबा ने देखा जब कि ऊपर से स्टार मिसल आत्माएं आ रही हैं और कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रही है, और फिर बस उस दुनिया को देखते ही बाबा बहुत खुश हो गए, उसी में तल्लीन हो गए। देख रहे थे कितना अच्छा रास कर रहे हैं बच्चे लोग, कितना अच्छी प्रकृति है, सारा वातावरण कितना अच्छा है। और फिर बाबा को क्या सुनाई दिया? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो देखो ये दो तीन बातें हैं साथ साथ भेद की वैराग्य वृत्ति के लिए। एक तो ये कि वैराग्य तब आता है जब कहीं अटैचमेंट जुड़े, यानी कि अब हमारा बेहद का अटैचमेंट होगा तो बेहद का वैराग्य होगा। अभी हमारे सब स्थूल अटैचमेंट है, लौकिक हैं, तन मन धन से संबंध से संबंधित है, वो सब विनाशी हैं। तो बाबा ने कहा है इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। तो इसीलिए पहला तो हमारा अटैचमेंट उससे हो जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, शिव बाबा है, नई दुनिया है, स्वर्ग है, जो बाबा ने अनुभूतियां अलग अलग बताई हैं, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव आदि आदि। तो जब उनका अनुभव होगा, उनके साथ अटैचमेंट होगा, बार बार वो अगर याद आएंगी तो यहां की चीजों से, वस्तु से, वैभव से, व्यक्तियों से अटैचमेंट निकलता जाएगा। और बाबा को भी तो यही हुआ, कितना बड़ा बाबा का धंधा था, इतने अलग अलग देश में भी धंधा, नेपाल में भी, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, सब जगह इतना धंधा था, लेकिन आसान नहीं होता ये छोड़ना। लेकिन जब बाबा को जैसे ही ये हुआ कि अब बस मुझे ये दुनिया बनानी है, उधर की तरफ बुद्धि जुड़ी तो इधर एकदम कट गया, और बाबा ने तुरंत कहा पार्टनर को, बस मुझे अब ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो हम एक तो ये अपने अंदर देखते चले कि जो बाबा ने कहा है उस तरफ मेरा बुद्धि योग कितना कितना होता चला जा रहा है, और जितना जितना उधर की तरफ जुड़ता जाएगा उतना उतना ये हद की दुनिया से ये अटैचमेंट निकलता जाएगा। तो वैराग्य वृत्ति यानी कि बेहद की तब आएगी जब हमें साथ में प्राप्ति का भी अनुभव होना चाहिए। अब हमें करते हैं बाबा को याद, लेकिन अगर प्राप्ति नहीं होगी ना तो क्या होता है, वो भी चीज टेम्परेरी हो जाती है। कोई अगर प्राप्ति होती है तो लास्टिंग होती है, किसी भी चीज की प्राप्ति स्थूल दुनिया में हो या ज्ञान में भी, भट्टी में आए हैं, शांति का अनुभव हो रहा है तो ये यहां पर परिवर्तन का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन के अंदर पुरानी बातें कई बार अगर अपने ऊपर असर कर देती हैं तो ये याद धीरे 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 कम होने लगती है। तो एक तो ये देखना है कि मुझे जो बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, खजानों में प्राप्ति होती है, जैसे स्थूल खजाना है पैसा धन दौलत सोना चांदी आदि, इसके अंदर व्यक्ति का मानो अगर ममत्व है, प्राप्ति है, दिखता है ये, क्योंकि इसके द्वारा जीवन के बहुत कार्य होते हैं, तो इसको देखते हुए ये खजाने जो हैं और जो बाबा ने खजाने दिए हैं, ये स्थूल खजाना है, और कितने खजाने बाबा ने बताए हैं बोलो, ज्ञान का खजाना, देखो समय का, संकल्प का, गुणों का, शक्तियों का, और स्थूल खजाना, ज्ञान खजाना, हाँ ये सब जितने खजाने हैं, इन खजानों का व्यवहारिक रीति से जीवन में अनुभव होना चाहिए। मानो गुणों का खजाना है, शक्ति का खजाना है, पहले हमें मानो बहुत क्रोध आता था, और अब अगर हमें सहन शक्ति है या दूसरों को एडजस्ट, दूसरों के साथ एडजस्ट होकर चलने की शक्ति है तो क्या होगा, फिर इसके ऊपर हमारा इतना कंट्रोल होता जाएगा तो हमें लगेगा कि सहन शक्ति का या जो उससे संबंधित गुण है उनको हमने अपना बना लिया। तो कोई भी चीज हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो प्रदर्शित तो आत्मा की शरीर के द्वारा होती है ना, ये शरीर है, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, तो इसलिए इन तत्वों के शरीर के द्वारा प्रेम भी प्रकट होता है तो क्रोध भी प्रकट होता है। इसीलिए इसमें हमें ये देखते चलना है कि ये इन तत्वों के बने शरीर पर हमारा कितना नियंत्रण होता जा रहा है। एक एक स्थूल कर्मेंद्री और ये सूक्ष्म कर्मेंद्री, इनके ऊपर हमारा कितना नियंत्रण होता जा रहा है। और ये बाबा का हमने देखा, बाबा हमेशा चेक करते थे कि देखो मेरे वो ना जब कोई संदेशी जाती थी ऊपर, देखो जो मेरे अंदर और जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उनमें अब कितना अंतर है, सुना होगा ना आपने। तो संदेशी आगे बताते थे कि जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उसके अंदर तो लाइट बहुत काफी है और आपके अंदर अभी उतनी लाइट नहीं है। तो बस बाबा का वही पुरुषार्थ होता था कि बस मुझे वैसा बनना है। तो हमेशा एंड रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए, लास्ट रिजल्ट, जो संपूर्णता है वो संपूर्णता मुझे पानी है, वो जितना ध्यान में रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ भी आगे चलता जाएगा। तो एक तो ये है कि अपने खजाने को हम देखते चले, उसमें लीकेज ना हो, या खजाना जो है ना लीकेज जब होता जाता है, जो इतने खजाने हैं, कोई परिस्थिति ऐसी आई एकदम, बहुत दिनों तक गुण शक्ति को इकट्ठा किया लेकिन सडनली कोई परिस्थिति आई, वो खजाना लीक हो गया, फिर से हम खाली के खाली हो गए। ऐसी स्थिति को देखने के लिए, चेक करने के लिए ना खास बाबा ने कहा है, जैसे जब हम लोग रोज मुरली सुनते हैं अमृत वेले, तो मुरली को सुनते जाओ और समाते जाओ। समाने का भाव क्या है? समाने का भाव उसका स्वरूप बनते जाए। मुरली में तो बाबा की लहर होती है, अभी अभी बाबा ज्ञान की बात बता रहे हैं, फिर योग की बात बता दी, कभी कहीं सतयुग का वर्णन कर दिया। तो उसमें बाबा ने कहा है जिस स्वरूप का वर्णन बाबा करते हैं उस स्वरूप में अपने को स्थित होके और उसका आनंद लो। जब स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं तो बाबा वहां ऐसा होगा, प्रकृति सतो प्रधान होगी, वहां पर पुष्पक विमान होंगे, वहां बच्चे तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। बस ये होते होते उस स्वरूप में स्थित हो जाएं जैसे ब्रह्मा बाबा स्थित होते थे। हम देखते थे ब्रह्मा बाबा को ना, कई बार इतनी उम्र थी खांसी आती थी, मुरली भी चला रहे हैं खांसी आ रही, तो बाबा कई बार हंसी में कह देते थे शिव बाबा ये मेरी सखी है ना, खांसी इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहते थे ना? शिव बाबा कहते थे बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हारे कर्म भोग तुम्हें ही चुकतू करने हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई कंसेशन करूं, मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, सबके साथ कंसेशन करना पड़ेगा, इसलिए वो तो तुम्हें चुकतू करना ही है, उसमें बाबा शिव बाबा कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए अब जब ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कंसेशन नहीं तो आपके या मेरे साथ कोई कंसेशन होगा? तो इसीलिए कोई भी बात हो, शरीर की व्याधि हो, कोई भी पेपर हो, समस्या हो, बस उसमें हम देखें परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो। बाबा कैसे करते थे? हरेक को अपनी अपनी विधि रचनी होती है। बाबा ने क्या विधि रची थी? कई बार ऐसा खांसी आती थी बहुत, हमें लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, आंख से पानी जैसा भी, आंख गीली हो जाते थे तो खांसी होती थी, बहुत तकलीफ, इतनी 93 इयर्स एज थी बाबा की। फिर उसके बाद थोड़ी देर में बस बाबा अपनी स्वस्थिति को मजबूत करते थे। कैसे? हिस्ट्री हॉल में आपने देखा होगा ट्रांसलाइट का चित्र बगल में रखा है, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा बस उसमें देखो बच्चे आज ये पुराना शरीर है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, खांसी है, तकलीफ है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, पांचों तत्वों से नया शरीर मिलेगा, बस कोई भी व्याधि नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और बस ये कहते 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 बाबा बिल्कुल अपनी स्वस्थिति को इतना मजबूत कर लेते थे कि कब खांसी रूपी परिस्थिति भागी पता ही नहीं चलता था। इसीलिए हमें भी देखते चलना है कि कोई भी स्वस्थिति मेरी इतनी मजबूत हो कि कोई परिस्थिति अगर आती है तो उस परिस्थिति के ऊपर हम संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर सके। परिस्थिति से घबराए नहीं, परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। एक तो ये देखते थे और बाबा का संपूर्णता का क्या निशान देखा, जिसमें कि हम लोगों को अपने को देखना है खास करके। एक हाँ, बाबा से हम लोग मिलते थे अक्सर करके, बाबा से मिलने की ये तीन जगह होती थी। ब्रह्मा बाबा से वो झोपड़ी में मिला करते थे, या बाबा के कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में। अगर दो तीन लोग होते थे कोई तो कमरे में मिल लेते थे, पांच छह होते थे तो झोपड़ी में, और अगर ज्यादा पार्टी होती थी 10-12-15 की, उस समय तो बड़ी पार्टी समझी जाती थी वो, तो तब हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो वहां पर ये जब बाबा से मिला करते थे ना, तो बाबा से पहले जब भी मिला करते थे, एक तो बाबा ने हम विषय मतलब बाबा के साथ साथ अपने को चेक करते चले। बाबा से कभी भी कोई मिलता था बच्चा, बाबा यूं कर आओ आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, इतना बाबा के नैन भराते थे प्यार से, और इतना बाबा का चेहरा और जगमगा उठता था। कलप पहले के बिछड़े हुए बच्चों से मिल रहे हैं, और बच्चे बस अपना बाबा की आत्मिक स्मृति इतनी पक्की थी आत्मा, तो कोई बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष हो, तुरंत हम बाहों में चले जाते थे बाबा के, और सबसे बड़ी बात विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, क्योंकि बाबा अशरीरीपन की स्थिति में होता था। और देखो आज भी अशरीरी होने में समय लगता है हमें अपना पुरुषार्थ से, लेकिन तब बाबा की मेहनत से अशरीरी तुरंत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने अशरीरीपन का पाठ इतना पक्का किया होता, टेम्परेरी से ही, थोड़े समय के लिए। फिर जब जितने समय तक वो शक्ति, मानो ये रुमाल है ना, इसको हम ऊपर फेंकते हैं, तो जब तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्यादा है, ये ऊपर जा रहा है, और जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा हो जाती है फिर ये नीचे आता है। ऐसी बाबा की शक्ति जो थी ना, थोड़े समय के लिए हम लोगों को एकदम देह भान भुला देती थी, और वो वैराग्य वृत्ति का, बस जो भी आते थे एकदम वैराग्य का अनुभव करते थे, क्या ये संसार है, वास्तव में जीवन तो यही है। क्योंकि बाबा ने अपने जीवन में बेहद का वैराग्य धारण कर लिया था इस कारण से। और उसके बाद फिर क्या होता था, जैसे ही बस थोड़े समय इसका अनुभव हुआ, फिर बाबा तब तब हाँ बच्चे आओ आओ नीचे, फिर जैसे कि हम मतलब आत्मा कोई निकलती नहीं थी, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे विड्रॉ हो जाती थी, तो हम धीरे धीरे देह में आ करके ना, फिर बस बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था। तो ये बताने का भाव क्या है कि जितना जितना हम ऐसे संघ के वातावरण के संपर्क में ज्यादा रहेंगे, उतना उतना हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति अंदर से और डेवलप होती जाएगी। अभी बाबा के बाद दादियां हैं, दीदियां हैं, मधुबन है, यहाँ का अलग अलग वातावरण है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने साथ ज्यादा समय गुजारे, अपने साथ। हम हो सकता होता क्या है कि बाहर की बातों के अंदर ज्यादा समय होता है तो उतना फिर उससे अटैचमेंट होता है, वैराग्य नहीं होता। लेकिन जितना जितना हम अपने अंदर और अंदर जाते जाएंगे, उससे पता चलेगा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के कितने निकट आते जा रहे हैं। तो एक तो बाबा का ये होता था, देखते थे हम कि बाबा जब मिलते थे और मिलके थोड़े समय में ही उसका अनुभव करा देते, आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा देते, हम अपने को देखें, मैं इतने वर्ष पुराना हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो नई आने वाली आत्माओं को क्या थोड़े समय के लिए मैं भी ऐसा अनुभव करा सकती हूँ आत्मा। जितना अगर हमने अपने अंदर अनुभव किया होगा, उतना हम दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। और बाबा का क्या देख रहा, बाबा से जब पहले मिलते थे तो बाबा कहते थे हाँ बच्चे क्या समाचार है, क्या सेवा है, कैसी तुम्हारा स्थिति है, कितना याद की यात्रा, पूछते थे और हम लोग बताया करते थे। लेकिन धीरे 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 बाबा समेटते जा रहे थे। तो वैराग्य वृत्ति के लिए एक ये आवश्यक है कि हम बाहर से जितना हमारा फैलाव है, लौकिक दुनिया में बिजनेस है तो बिजनेस का फैलाव, घर गृहस्थी में रहते हैं तो पूरा घर गृहस्थी का भी बहुत बड़ा फैलाव होता है, धीरे धीरे हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को भी देते जाए। क्योंकि जितना फैलाव होगा अंत में बुद्धि वहीं अटकेगी। सब चीज अगर हमने अपने पास रखी हुई होंगी ना, तो धीरे 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 वह अंत समय में जब प्राण तन से निकलेंगे वही चीजें सब एक एक करके सब याद आएंगी और फिर अंत मते सो गति तो होगी नहीं। इसलिए ये आवश्यक है अभी हम तैयारी ऐसी करें जो बाबा कहता है घर चलने की ना, तो वो घर चलने की तैयारी उस हिसाब से होगी जब हम अंत मते सो गते, अंतिम हमारी स्थिति हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए जैसा बाबा में देखा, हमने देखा हम बाहर थे आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग करने के बाद, और ONGC ज्वाइन की 67 में और हम आसाम में पोस्टेड थे। देखो इतनी दूर है, जब हम जा रहे थे तो हमारी दिल नहीं थी, हमने कहा बाबा वहां तो कोई सेंटर ही नहीं है आसाम में, इतना दूर पास में पास सेंटर भी है वो भी 3000 किलोमीटर है तो कलकत्ता। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे कोई नहीं, बाबा ही तो तुम्हें भेज रहा है, और इसीलिए वहां बाबा के बहुत बच्चे हैं, वो तुम्हारा बाबा के संदेश का इंतजार कर रहे हैं, जाओ और बस जब तुम्हारा काम पूरा होगा बाबा बुला लेगा। तो देखो बाबा ने जैसे पहले से ये इंडिकेशन दे दिया था, और उसके बाद वहां बहुत बाबा ने जो सेवा कराई, थोड़े समय में ही बहुत बड़ी सेवा जम गई। और जनवरी 1969 में ना बाबा ने जैसे इशारा दिया आओ बच्चे यहाँ पर आ जाओ मधुबन, और जनवरी हम 17 तारीख की सुबह यहाँ पर पहुंच गए 1969। तो उस समय बाबा की कर्मातीत अवस्था में एक खास बात ये भी देखी हमने कि बस हमेशा तो बाबा से मिलते थे, हालचाल सब सुनाते थे, लेकिन तब बस सुनाने के लिए बाबा से ये बात करेंगे, ये सेवा की बात करेंगे, ये धारणा की बात करेंगे, लेकिन बाबा के सम्मुख जाते थे बाबा ने यूं दृष्टि दी, और दृष्टि दे के बाबा बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। मतलब हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं होती थी, बाबा जैसे मन के सारे हाल सारे विचार तुरंत ही नैनों से पढ़ लेता था। ये कौन सी स्थिति है? मन जीते जगत जीत की स्थिति। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था तो मन जीतने से पूरा दूसरे के मन का भाव बाबा तुरंत पढ़ लेता था। एक बार दो बार नहीं, पूरा 7-8 बार उन दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को बाबा के सम्मुख गए, बाबा से बात करी, मिले जुले, और बस कुछ भी पूछना होता था बाबा के सम्मुख जाते थे तो बाबा हमारा एक अक्षर भी बोलने से पहले ही बस बाबा यही बात कि बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा। तो ये एक तो स्थिति है संपूर्णता की। और जैसे पानी होता है ना, पानी स्थिर होगा अपनी छवि हम उसमें देख सकते हैं नीचे पड़ा, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ लेके डाल दो लहरें पैदा होंगी तो क्या होगा, अपनी छवि दिखाई देगी स्पष्ट? नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हमारे अंदर संकल्पों की लहरें होंगी ना बहुत ज्यादा, तो संकल्पों की लहरें जो है हमें दूसरों के संकल्पों को पढ़ने नहीं देंगी। अगर हम दूसरे के संकल्प जान ही नहीं पाएंगे तो उनके संकल्प पूर्ण कैसे कर सकेंगे? अंत समय में बहुत आत्माएं आएंगी जो अपनी अनेक इच्छाएं लेके आएंगी, साक्षात्कार की भावना लेकर के आएंगी, कई प्रकार की चीजें लेके, तो हम तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे जब पहले हम उनकी बातों को अंदर तक जान तो ले किस इच्छा से वो आत्मा आई है। और जैसे भक्ति में गायन है, भक्त भगवान के सम्मुख जाता था, इच्छा होती थी, भगवान पढ़ करके क्या बोलते थे, हाँ तथास्तु एक अक्षर, और भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये कोई भक्ति मार्ग और बहुत ऊंची बात नहीं है। हम सब बच्चे भी अभी ना उसी लोग उसी निगाह से अभी हमें देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इसलिए ये आवश्यक है कि अभी हम उसके लिए अपने को तैयार करते जाएं। इसीलिए बाबा कहता है उसके लिए तैयार करो। किस तरह तैयार करो? अपना ये तन और मन, ये दोनों बस हर हालत में तुम्हारा पवित्र रहे। अपने तन मन को पवित्र रखोगे तो बाबा तुम्हारे तन के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों को लीला दिखाएंगे कि बस कहेंगे हे प्रभु, बस जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। भक्ति मार्ग में जितनी बातें निकली हैं वो सब यहां से ही हम बच्चों के द्वारा ही ये निकली हुई। इसलिए अभी हमें ना ये एक तो ये करते चलना है। और यहां मैंने क्या देखा, 18 जनवरी को ना मैं यहीं पर ही था, तो जैसे बताया बाबा के सम्मुख, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है तो उसे अपनी देह त्याग का पहले से आभास हो जाता है। इच्छा मृत्यु का किसको था? इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को था ना, तो ब्रह्मा बाबा ही तो वही है, भीष्म पितामह। तो 18 जनवरी की सुबह से बाबा ने यीशु दादी को बोला, जितने पत्र लिखाने हो लिखा लो, तो जो भी पेंडिंग काम है, रहा हुआ काम है, वो पूरा कर लो। तो यीशु दादी ने सारे पत्र लिखा लिए, कोई भी काम रहा हुआ अधूरा वो नहीं छोड़ा। जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है हमारा, और वो म्यूजियम की बिल्डिंग लेनी थी, वो बिल्डिंग का काम बचा हुआ था, बाबा ने उस दिन उस पर भी साइन करके कि हाँ इसको ले लो सेवा के लिए, आदि आदि। तो इस तरीके से सारा काम हुआ। और फिर बाबा ने शाम को रोज क्लास होती है, रोज 9 बजे क्लास होती है, रात्रि क्लास बाबा कराते थे रात्रि क्लास। उस दिन बाबा ने 6:30 बजे लगभग बोला, हाँ जमुना प्रसाद भाई को बुला के, कि बाबा अभी क्लास में आएगा और बस जल्दी क्लास कराएगा, सबको इन्फॉर्म कर दो। उसने इन्फॉर्म कर दिया, सब भोजन वोजन करके 7:15 तक आ गए और फिर बाबा भी क्लास में आए। तो बस उस दिन बाबा का रूप भी बिल्कुल संपूर्णता का रूप स्वरूप था, एकदम लाइट का ऑरा भी चमक रहा था, और बाबा क्लास में आए और बस बाबा ने मुरली ऐसी चलाई कि एक बार भी न बाबा को खांसी गला साफ करने की जरूरत पड़ी, न खांसी आई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा के सारे हिसाब किताब चुक्त हो जाते हैं, कार्मिक अकाउंट सब पूरे हो जाते हैं, तो फिर आत्मा जो है, ये शरीर जो और आत्मा इसमें है, कोई भी व्याधि शरीर को उसकी अनुभूति नहीं होती, रुकावट नहीं डालती। इस तरह बाबा ने क्लास करके बाबा गए, और बस बाबा वहां हम भी बैठे हुए थे, सम्मुख मुरली सुन रहे थे। बाबा उसके बाद क्लास करके बाहर गए और बाबा का देखा हमने कि अंदर बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते हमें भी एकदम संकल्प आया, बाबा कुछ बोले हमारे लिए। बस देखो एक मिनट संकल्प ही आया, और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, तुरंत भक्त की कामना, भक्ति मार्ग में बोलते हैं कामना हुई, भगवान तक पहुंची, और भगवान बस तुरंत बाबा ने वो संकल्प पढ़ के कुछ महावाक्य उच्चार दिए। उसमें आज तक भी वो रिकॉर्डेड है, और 18 जनवरी की अंतिम रात्रि क्लास में वो महावाक्य रिकॉर्डेड है, जो कि यहाँ ओम शांति भवन में फर्स्ट फ्लोर में नीचे जो वहां पर ऑडियो विजुअल काउंटर है वहां मिलते हैं। तो बाबा बस मुरली चला के गए और एक एक बच्चे को दृष्टि देते रहे। फिर बाबा एक कदम चलते थे, फिर रुक जाते थे, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे, और हर एक को ये अनुभूति हो कि बाबा जैसे बाबा का आज अंतिम मिलन है। उसी स्नेह से बाबा प्यार से मिले और गए। फिर मिलके बाबा बाहर जाके क्या बोला बाबा ने, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। पहले कभी भी ये विदा शब्द बाबा ने और छुट्टी लेता है नहीं, हमेशा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट या गुड मॉर्निंग जैसा दिन होता था, तो ऐसा करके जाते थे। बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, यानी कि कर्मातीत वाली आत्मा को पहले आभास हो जाएगा, बस अब मेरा ये अंतिम साकार मिलन है। छुट्टी लेके गए बाबा, अपने कमरे में शरीर छोड़ दिया। लेकिन ब्यूटी तो उसके बाद देखी हमने, यहां तक तो मन जीते जगत जीत के बहुत सारे उदाहरण देखे, लेकिन प्रकृति जीत का उदाहरण इसके बाद देखा। जो बाबा कहता है मन जीता, साथ साथ ये प्रकृति पांच तत्व प्रकृति जीत का उदाहरण कि 18 जनवरी को रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, एकदम जैसे फरिश्तों का सा शरीर दिखता है। वो सबसे बड़ी बात ये कि जब 21 तारीख को हम लोगों ने स्नान कराया सब वरिष्ठ भाई लोग, और वहां शांति स्तंभ तक ले गए अग्नि संस्कार के लिए, तो देखा बाबा के शरीर में ना अकड़न बहुत कम थी। नहीं तो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर तो अकड़ जाता है, लेकिन बाकायदा पूरा शरीर में कोई भी अकड़न नहीं, मतलब थोड़ा बहुत स्टिफ था, लेकिन फिर भी काफी हद तक ऐसा था जैसे कि अभी भी बाबा, कोई गंध नहीं, दुर्गंध नहीं, काला नहीं पड़ा शरीर। तो ये प्रकृति, पांच तत्वों की प्रकृति, इसने भी बाबा को अंत तक पूरा सहयोग दिया। ये प्रकृति जीत का लक्षण। तो हम लोगों को भी प्रकृति जीत बनना है। कैसे बनेंगे, पांच तत्वों का बना शरीर है ना, तो इन प्रकृति के तत्वों से हम अपनी मित्रता कर लें। ये प्रकृति अंत में हमारा पूरा साथ निभाए, क्योंकि प्रकृति के कारण मृत्यु बहुत बड़ी मात्रा में होंगी। बाबा ने कहा अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड आएंगे, लेकिन बाबा ने यह भी कहा है कि मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की रक्षा के लिए, और बस प्रोवाइडेड ये जो है ना बच्चों का वॉइसलेस कनेक्शन, अभी ये टेलीफोन तो वायरलेस कनेक्शन है, ये सब खराब, ये सब कोई काम नहीं करेगा वायरलेस कनेक्शन। साइंटिफिक है, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म होगा रिवर्सल और सब कम्युनिकेशन फेल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ये बाबा ने कहा है जो वॉइसलेस कनेक्शन जिनका होगा, वो वॉइसलेस कनेक्शन वाली आत्माएं उनको मैं टच करूंगा और ऑटोमेटिकली उनके पैर वहां पड़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए। लेकिन इसके लिए बाबा ने यही बताया है, ये प्रकृति के तत्व है ना, इनको अपना मित्र बना लो। कैसे बनाए, हाँ मानो बहुत फ्लड, आप तो बंबई से हो ना, हाँ बंबई को बाबा ने क्या कहा है, कैसे जाएगी बंबई, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल सेफ्टी से रहेंगे। किस रीति से, पानी को अगर हमने अपना मित्र बना लिया होगा, जल को, जल में सबसे बड़ा गुण कौन सा है, शीतलता। देखो जल में गुण है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। पानी को गिलास में लो, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, इवन चम्मच में लो, चम्मच में सेट। ऐसी अगर मेरे संस्कार ऐसे हो मैं हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सकूं, ये ना कहूं कि इनके साथ तो संस्कार मैच करना बड़ा डिफिकल्ट है, इनके साथ सहज है। नहीं, पानी हर जगह हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। तो अगर मेरे भी संस्कार इतने लाइट हुए, हल्के हुए कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होके अगर मैं चल सकूं, तो क्या होगा, पानी कभी भी मेरी मृत्यु का कारण दुख का कारण नहीं बन सकता। चाहे जितना फ्लड हो सुनामी हो, लेकिन कभी भी मेरे कष्ट का कारण नहीं बन सकता पानी। क्यों? क्योंकि मित्र और मित्र के बीच में तो हमेशा मित्रता होती है और वो एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। और भी बहुत गुण है, लेकिन अभी समय के अभाव में मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो एक ये गुण है पानी का, और गुण है आगे बढ़ता रहता है पानी, कभी रुकता नहीं है। पानी के सामने इतना बड़ा बोल्डर भी आ जाएगा, बड़ा पत्थर भी, तो भी पानी अपना रास्ता बना के आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ही हमें कोई भी परिस्थिति आए, पेपर आए, कुछ भी आए, आगे बढ़ता रहना, उसको देख करके परिस्थिति या समस्या को रुक नहीं जाना। और पानी में, पानी अगर रुक जाता है तो क्या होता है, रुके हुए पानी में बदबू आएगी, गंध आएगी, मक्खी मच्छर कीड़े पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मानो मेरा भी आगे बढ़ना कहीं रुक गया है, और अगर मेरे अंदर भी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, यही कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर हैं, ऐसी भावनाएं अगर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा आगे बढ़ना रुक गया है। इसीलिए इसको अपना चेक करते चलें कि कहीं मैं ऐसा न हूं, पानी की तरह मुझे सदा आगे बढ़ते रहना। तो सबसे बड़ा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, संस्कार एडजस्टमेंट का, ये मुझे पानी के साथ करना है, पानी का गुण है। तो उससे क्या है, पानी अंत समय तक मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेगा। दूसरा तत्व है पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी का कौन सा गुण होता है, सहनशीलता। और पृथ्वी देने वाली है, किसी ने बोला भी है, वो दाता है पृथ्वी। पृथ्वी से ही हमें देखो सब चीज मिलती है, पानी भी मिलता है, अनाज भी मिलता है, गेहूं है और फल फ्रूट, सब चीज पृथ्वी से मिलती है। ऐसे ही पृथ्वी की तरह अगर हम दाता बन के, पृथ्वी कितना देती है, एक बीज बो दो पृथ्वी में पेड़ उगाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। इस तरीके से पृथ्वी की तरह हम सदा दाता बन के, हमारे सम्मुख जो भी आए खाली हाथ ना जाए। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, प्रेम है, सहयोग है, सहिष्णुता है, शांति की बात है, और जो भी आते हैं हमारे सम्मुख उसका दिल लेकर के प्रेम से हम बात करेंगे, तो बस जैसे उसे सब गुण और शक्तियां लेके वो हमारे से आत्मा जाएगी, इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं। तो इस कारण से पृथ्वी की तरह अगर हम दाता बन जाएंगे तो क्या होगा, कौन सी आपदा से बच जाएंगे? पृथ्वी की कौन सी सबसे बड़ी आपदा होती है? अर्थक्वेक। जितना भी भूचाल आएगा, अर्थक्वेक आएंगे, हजारों बिल्डिंगें गिरेंगी, आसपास चारों तरफ वो होगा, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया। मुझे याद आती है कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा, अमरीका में अर्थक्वेक आया था कुछ वर्ष पहले, चारों तरफ बहुत विनाश हुआ कैलिफोर्निया सिटी का। तो वहां पर एक प्रोफेसर थे, उनका मकान रिट्रीट सेंटर जैसा अलग फार्म हाउस, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उनके मकान के कांच के टुकड़े भी क्रैक नहीं हुए, कांच भी। तो बाद में मीडिया वाले और सारे लोग गए कि भई आपने किस मटेरियल से बनाया है ये, तो उसने कहा मटेरियल तो मेरा साधारण ही है जो सब यूज करते हैं, फिर ये कैसे हुआ आपके इधर 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 चारों तरफ विनाश हो गया और आपका मकान बीच में ना क्रैक भी नहीं हुआ, अर्थक्वेक तो सभी जगह आया। तो कहते भाई ये मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं धरती माता से रोज वार्तालाप करता हूँ, रोज उनसे बात करता हूँ कि हे माता, आप माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूं और आप देखो कि आपके द्वारा मुझे भी कोई कष्ट न हो। हाँ, जब परिस्थिति में मुझे आप धरती को खोदना भी पड़ता है तो मैं उसको खोद करके उसमें, और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये भाई मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है, हे धरती माता, मैं नहीं चाहता, लेकिन आप माँ हो, आप बच्चे की बात को समझो। मैं बहुत प्रेम से रोज धरती के साथ वार्तालाप करता हूँ। अब यूसी ये वो कोई बीके नहीं था, इंडियन भी नहीं था, अमेरिकन प्रोफेसर था। तो देखो, जब एक वहां पर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर तो ये तत्व जो है, ये बाबा की मुरली चली है 95 में, काफी सीरीज ऑफ मुरली, चार पांच ऐसी मुरली, तत्वों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए, उसके ऊपर पूरी बाबा की मुरली चली है। तो इस कारण से ये धरती पर अगर हम चाहते हैं अर्थक्वेक हो, होगा ही, अंत समय में विनाश का कारण तो एक मुख्य वही है, लेकिन हम मक्खन से बाल की तरह निकल जाए। बाबा कहता है मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की रक्षा के लिए, और बहुत उदाहरण है, हमें याद है लाटूर का वक्त का, यहाँ पर भी जब लाटूर में हुआ था, कछभुज में अर्थक्वेक वगैरह हुआ था बहुत, तो यहाँ पर लेटर आते थे और बस बहुत लेटरों से ऐसा पता चलता था कि चारों तरफ जैसे बहुत मकान गिर गए, टूट गए, लेकिन बाबा का झंडा वाला मकान वो खड़े रहे। क्यों? क्योंकि ये बाबा ने कहा है बच्चों की रक्षा के लिए मैं बंधा हूं, लेकिन हम प्रकृति के साथ रोज वार्तालाप करें तो बस, तो ऐसा जल का गुण का जो है, ऐसी धरती का, हे धरती माता, आप सहनशील हो, मैं भी सहनशीलता का गुण धारण करके आपके द्वारा, बस मैं, आप जैसे दाता हो, मैं भी दाता बन करके सृष्टि की समस्त आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सब किरणें देती चलती हूँ। ये धरती माता, मैं, हम आपके बच्चे, आप हमारी माता, और आओ प्रकृति के तत्व आपस में हाथ मिला करके हम नई दुनिया की सृष्टि की, नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बने। वो पूरा मैं वो भी बताने का प्रयास करता हूँ अगर समय हुआ तो। ऐसे ही ये जल के साथ पृथ्वी, फिर वायु का क्या मुख्य गुण है? वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। तो देखो विरोधाभास है दोनों में, फिर भी साथ साथ रहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायु ही वायु है, दोनों विरोधाभास हैं। तो जब साइक्लोन आता है, बहुत बड़ा बड़ा, आपने समुद्र के किनारे देखा कितनी तेज हवा चलती है, और उससे क्या होता है, बहुत चीज ऊपर उठ के चली जाती है। कई बार फोटो आता है भाई, गाय भैंस भी ना, उसमें कोई फ्लड आया, कोई मकान की छत पर पहुंच गए, कार उठ के ऊपर छत पर पहुंच गई, आदि आदि। कैसे? क्योंकि वायु हर चीज को हल्का करती है। ऐसे ही अगर हमने एक गुण धारण किया होगा कि हम हर परिस्थिति में हल्के रहें, भारी ना हो, कोई भी पेपर आए, अक्सर करके हम भारी हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, भारी ना हो। हर परिस्थिति में अगर हम हल्के रहना सीख लिया तो उससे क्या होगा, हर परिस्थिति में हल्के रहना, इसका मतलब वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। फिर चाहे जितने भी साइक्लोन आएंगे, बवंडर आएंगे, जितने भी वो होंगे, लेकिन ये वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि ये प्राण वायु है। प्राण वायु सदा, वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे थोड़ी देर भी अगर हम श्वास न लें, वायु न हो, व्यक्ति तो खत्म। तो वायु जो है ये प्राण वायु है। ऐसे जीवन के प्राण वायु, ब्राह्मण जीवन की प्राण वायु कौन सी है, कौन सी है, सदा हल्के रहने की विधि कौन सी है? हाँ, दो बाबा ने बताया है, सदा उमंग और उत्साह। जो फरिश्तों की बात होती ना, सदा अगर उमंग उत्साह में रहेंगे, पेपर तो आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना है। लेकिन हम उसमें हल्के रहें, और हल्के रहने का ये साधन है सदा उमंग और उत्साह में रहें। उससे क्या होगा, खुशी में रहेंगे। जो भी परिस्थिति होगी वो परिस्थिति के वशीभूत हम नहीं, परिस्थितियां जरूर आएंगी, पक्का आएंगी। इस कारण से वायु की तरह अगर हल्का रहना सीखेंगे तो जितना भी वायु की तरफ से समस्या होंगी वो हमें विचलित नहीं कर सकती। फिर और कौन सा तत्व है, अग्नि। अग्नि तत्व में क्या है, अग्नि देखो परिवर्तन भी कर देती है, और साथ में अग्नि जो है ना, जो है शुद्ध करती है जैसे कहा जाता है, और दूसरी बात हर एक चीज का जब रूप परिवर्तन कर देती है तो ज्ञान सूर्य बाबा, सूर्य जो है अग्नि का स्वरूप है प्रकृति में, तो ज्ञान सूर्य की तरफ जब हम देख करके चलते हैं तो क्या होता है, परछाई किधर होती है, परछाई पीछे होती है। सामने मुख होगा लाइट की तरफ, परछाई पीछे होगी, तो परछाई यानी कि छाया माया, ये है, कमी कमजोरियां पीछे रह जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमारा मुख घूम जाता है वो परछाई जो है हमें गाइड करती है, वो आगे चलती है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए इसमें यही देखना है कि बाबा की तरफ हमेशा हमारा सदा मुख रहे। उससे क्या होगा, ज्वालामुखी योग जो बाबा ने कहा है वो उसमें इतना इंटेंस योग, योग की अनुभूति की, बाबा ने कहा अंत समय ऐसी बहुत परिस्थितियां आएंगी, बात आत्मा है, रोती हुई आत्मा आए लेकिन हंसती हुई चली जाए। उस समय कहने का समय नहीं होगा मेरी ये समस्या है इसलिए मैं रो रही हूं, ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो फैक्ट ये है कि बस रो रही है, आए आत्मा। और हमारा जितना ज्वालामुखी योग होगा अग्नि स्वरूप, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, क्रोध में से वो हंसते हुए चली जाएगी, अशांत आत्मा आएगी, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाएगी, दुखी आत्मा आएगी, सुख की अनुभूति करती हुई चली जाएगी। लेकिन कब होगा, जब हमारा ऐसा ज्वालामुखी। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा है, इसकी अनुभूति के लिए ये आवश्यक है कि ये दूसरी आत्माओं को अनुभव तब कराए जब हम अग्नि के द्वारा भी, जिन जिन के साथ हमारा संपर्क है तत्वों के साथ, रोज अपना एक नियम बना लें, जैसे हमारा योग का नियम है ना, सुबह शाम का योग करने का, ऐसे तत्वों के साथ भी हम कम से कम 10 मिनट रोज, दो दो मिनट एक एक तत्व के साथ जरूर वार्तालाप करें। बस अग्नि के साथ क्या करेंगे, है अग्नि देवता, हाँ ये सब जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, धरती माता, ये सब तत्व हैं, तो ये देवता हैं। तो हे अग्नि देवता, आपके अंदर जैसे रूप बदलने की शक्ति है, ऐसे ही मुझके मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आए कि मैं आत्माओं, दुखी अशांत आत्माओं का रूप बदल के उन्हें सुख शांति की अनुभूति करा सकूं, ऐसा ही अनुभूति हो हर एक। और आकाश तत्व का अंत में क्या गुण होता है, आकाश का विशालता है, और पोलार, और आकाश तत्व होता है ना, देखो विशाल तो है ही है पूरा का पूरा, ऐसा हमारे हृदय में भी इतनी विशालता हो कि हम हरेक की कमी कमजोरी देखते हुए भी उसे माफ कर सके, रहम दिल हो करके, तरस खा करके उस आत्मा की कमी कमजोरी को अपने दिल में स्थान न दें, बल्कि ये समझें इस समय हरेक आत्मा कमी कमजोरियों का भंडार है, और इसके बाबा इसकी भी ये कमी आपको भरनी है। और उससे क्या होगा, जितना जितना विशालता होगी, हम अपने को देखते चले कि मेरे अंदर इसी विशालता है। अब इतने सब भाई बहन हैं, किन्हीं के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, सामने से मिलेंगे, बस आओ भाई आओ, कैसे हो, और बातचीत करेंगे, ओम शांति। मानो किसी से संबंध अच्छे नहीं है उतने, सामने से अगर आएगी भी वो आत्मा तो भी नजर बचा के कई बार निकल जाते हैं। ये विशालता का सूचक नहीं है। तो विशालता में यही होता है कि हम किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को उसे क्षमा भाव। और क्षमा कब कर सकते हैं, कौन क्षमा कर सकता है, जिसमें कौन सी शक्ति विशेष हो, भूलने की शक्ति। जिसमें भूलने की शक्ति विशेष होगी, हर आत्मा में जब से हम लोग पैदा होते हैं, हम सब में दो शक्तियां होती हैं, एक याद करने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति, हर एक के अंदर ये होती है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की, कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बहुत वर्षों तक याद रहती है। उससे क्या है कि लोगों की कमी कमजोरी, कोई उन्होंने हमें अपोज किया है, कोई दुख दिया है, वो बात वर्षों तक याद रहती है। इसीलिए जो भी महान आत्माएं होके गई हैं, अब शुरू से देख लो, कोई मदर टेरेसा हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, ब्रह्मा बाबा का संपर्क में तो हम बहुत रहे और देखा, बड़ी से बड़ी बात हो जाती थी, बाबा अच्छा बस कह के ही बाबा को वो बात याद ही नहीं रहती थी, भूल जाते थे। तो उससे क्या, आकाश की तरह अगर विशालता हमने धारण की हुई होगी तो क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली जो भी आपदाएं होंगी, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, बम हैं, हाइड्रोजन बम, और सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आकाश मार्ग से आने वाली कौन सी है, क्लाउड बर्स्ट, बादल फट जाते हैं ना। देखो कहां पर कोई पहाड़ों पर सोचता भी नहीं कि फ्लड आ जाएगा, उत्तराखंड में और केदारनाथ में बाढ़ आ गई, और इतने 10-10, 15-15 फीट पानी यूं ही 15-10 मिनट के अंदर ही बढ़ जाता है, क्योंकि बादल फट जाते हैं आकाश मार्ग से, ये आपदा जो आती है। तो इससे अगर बचना हो, आकाश के मार्ग से आने वाली आपदाओं से, तो हमें क्या करना है, अपने अंदर विशालता का, महानता का गुण धारण करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, जितना जितना हमने ये गुण धारण किया हुआ होगा, उतना आकाश मार्ग से आने वाली कोई भी परिस्थिति होगी वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है मैं बंधा हुआ हूं। और आप देखो आजकल विशेष रिसर्च हो रही है कि अर्थक्वेक आती है, हा? मनुष्य को तो एक सेकंड पहले भी पता नहीं चलता, लेकिन कई हैं उनको पहले से पता चल जाता है। जीव जंतु हैं, गाय भैंस छिपकली सांप नेवला जो जमीन के अंदर रहते हैं उनको पहले से पता। हम लोगों को भी जब इंजीनियर एमटेक कर रहे थे उस वक्त ये पेपर हम लोगों का विशेष था, और आजकल ये सीरीज चल रही है एक, कैसे इनके द्वारा इनको पता कैसे चलता है जो चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ ज्यादा इन जानवरों की हार्मनी है, इस कारण से उन लोग वो पहले से सिग्नल को पकड़ लेते हैं, जबकि मनुष्य उस सिग्नल को नहीं पकड़ पाता। तो आवश्यकता ये, हमारा जीवन भी ना प्रकृति के अनुरूप हो, हमारी नेचर बाहर की नेचर के साथ हम मैच कर सके। नेचर का एक मतलब है स्वभाव, संस्कार, भाई मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, नेचर कह देते हैं ना। और दूसरा मेरी नेचर यानी ये पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, उन नेचर के साथ मैं अपनी नेचर को मैच करता चलूं। जैसे बताया एक एक गुण एक एक शक्ति बाहर के हर एक के आप कम से कम 5-5 गुण तो बहुत सहज रीति से सोच सकते हो। जल का जैसे बताया, वायु का, अग्नि का, पृथ्वी का, आकाश का, और उन गुणों को अपने अंदर जितना हम धारण कर सकते हैं और रोज कम से कम एक एक तत्व के साथ दो मिनट वार्तालाप जरूर करें। वार्तालाप में क्या कहना है, बस यही एक एक तत्व के साथ, मानो हे जल देवता, ऐसी जगह मानो आप खड़े हो जाओ जहां पांचों तत्व, पृथ्वी तो होती है, आकाश भी है सब जगह और वायु भी है सब जगह, फिर बाकी मुख्य जल की बात है, और अगर अग्नि सूर्य है तो बस, और यही वार्तालाप करो, हे जल देवता हाँ, मुझे आपकी तरह सहनशील बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है, आपकी तरह मैं सदा आगे बढ़ता रहूं, बढ़ती रहूं, आप मुझे आओ हम दोनों मिल करके इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएं। हमें याद है बाबा ने ना 95 में हमारा पर्यावरण जागृति अभियान कनानूर से केरल से पास हो रहा था, और तब बाबा की ये मुरली चली थी, शाम को मुरली मिली और अगले दिन सुबह के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि कल सुबह समुद्र तट पर जा करके समुद्र के ऊपर ये प्रयोग करते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे हम समुद्र तट पर गए और करीब 15 भाई बहने हम लोग थे, और बाबा ने कहा था कि आप जब देवता उनको कहो कि आप भी देवता हो, हम हो वन आर देवता, आइए हम लोग शेक हैंड करें, हाथ मिलाएं और इस सृष्टि को पावन बनाने में सहयोगी बने। सुबह 4:15 बजे पहुंच गए समुद्र तट पर, वहां पर योग किया और योग के साथ साथ फिर ये लक्ष्य रखा कि जल देवता के साथ हमें शेक हैंड करना है। बहुत दूर थे सी बीच से और वहां बहुत दूर, और संकल्प ये था, कोई समुद्र बिल्कुल शांत था, एक भी लहर नहीं थी, और बस ये संकल्प रखा। तो फिर बाबा को कहा कि बाबा बस, और एक उस सब इसी संकल्प में थे, आओ जल देवता हम और आप मिल करके इस सृष्टि को पावन बनाएं, अगर आप तक हमारी वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं तो आओ हम होवनहार देवताओं का आप चरण स्पर्श, बाबा ने कहा था वो तत्व आएंगे और आपके चरण स्पर्श करके जाएंगे, तो इसलिए चरण स्पर्श करके देखो। तब तो एक कल्पना जैसी लगती थी, लेकिन उस वक्त देखा तो बस आए और बस चरण स्पर्श, थोड़ी देर में 5:01 था, बस पूरा हो गया। हाँ राइट, तो बस ये मैं लास्ट अनुभव सुना रहा था इन्हें कि कैसे एक सेकंड के लिए भी वो एक लहर आई समुद्र की, और हम सब जो बैठे हुए थे होवन हर देवता सबके चरण स्पर्श करके चले। ऐसे योग के प्रयोग करो, और जितना जितना योग के प्रयोग हम करते जाते हैं ना, उतना उतना अपने ऊपर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो रोज मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीते का भी नित्य अभ्यास करना है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। शुक्रिया के लिए भी एक हाथ का ताली, वेरी गुड, बहुत अच्छा।